नाम के गुण और कीर्तन के करने से मनुष्य का कल्याण हो सके है। ऐसे ही भगवान के स्मरण से, भगवान के ध्यान से, भगवान के ध्यान से जैसे ध्रुव जी महाराज का कल्याण हो गया, उनके कार्य की भी सिद्धि हुई और कल्याण भी उसका हो गया ध्रुव जी का। और शास्त्र भी प्रमाण है कि ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना, कितनी ऐसो ध्यान के द्वारा उस परमात्मा का अपने हृदय में साक्षात्कार करते हैं। तो केवल ध्यान से थी उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना, इससे ये बात सिद्ध होती है कि केवल ध्यान से ही कितने ही आदमी उस परमात्मा को अपने हृदय के मां बुद्धि से अनुभव करते। और भी समझो कि उससे भगवान के स्वरूप के स्मरण से भी उद्धार हो जाता है। ये स्मरण भक्ति है। केवल स्मरण से थी, केवल चिंतन से थी, अनन्यास चिंतियंतो मांगे जना परिपाशते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहामि हम। जो अनन भाव से मेरा चिंतन करते हुए और निष्काम भाव से मेरी उपासना करते हुए उसको जो भजते हैं, उनका मैं योगक्षेम बहन करता हूँ। अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग और प्राप्ति की रक्षा का अप्राप्ति की रक्षा माने प्राप्त की रक्षा जो है उसका नाम क्षेम और अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग। जहां तक हमारा साधन बढ़ गया उसकी तो भगवान रक्षा करते हैं, जो हमारे में कमी है उसकी पूर्ति कर देते हैं। ये बात भगवान ने गीता की 9वीं अध्याय के 22वें श्लोक में बतलाई है। केवल चिंतन से थी और मन के मन उसमें लगा देने से, ध्यान से थी भी तेसांग अंग समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ है मैया वैसी चेष्टा। कहते हैं कि मैया वैसी चेष्टा तेसांग पुरुषा नाम, जिन पुरुषों ने मुझ परमात्मा में अपने चित्त को समावेश कर दिया है, उन पुरुषों का मैं मृत्यु संसार से शीघ्र उद्धार कर देता हूँ। अतः मई मनाद स्व मई बुद्धि निवेश निविशिष्टमय अत उद्वंग्न संशय। अर्जुन तू मेरे में मन को लगा दे, मेरे में बुद्धि को लगा दे, फिर तू मेरे को प्राप्त होगा। इसके उपरांत कोई भी इसमें शंका की बात नहीं है। बुद्धि को भगवान में लगाना, बुद्धि में भगवान के स्वरूप का निश्चय करना और बुद्धि के निश्चय के अनुसार मन से उनका मनन करना, चिंतन करना, स्मरण करना, ये समझो कि स्मरण भक्ति है। इससे भूतों का उद्धार हो गया और समझो कि शास्त्र की भी आज्ञा है, विधि वाक्य भी है, उदाहरण वाक्य भी मिलते हैं कि बहुत से वाल्मीकि ऋषि बड़े भारी पापी थे किंतु भगवान के ध्यान में मस्त हो गए तो उनका भी सुख कल्याण हो गया। तो इसी तरह से थी संसार के बीच के मां केवल ध्यान से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही चरण सेवा से, भगवान के चरण की सेवा से ही भगवान की प्राप्ति हो जावे। अपने जैसे केवट की होगी थी, तुलसीदास जी महाराज रामायण के मां लिखते हैं कि जब केवट के पास भगवान पहुंचे तो उस समय के बीच के मां आहा, केवट ने कहा कि प्रभु आपके चरणों के बीच में कोई ऐसी जड़ी बूटी है एक प्रकार से कि आपके चरणों की धूली किसी पर पड़ जाए तो वो ऐसा उसका उद्धार हो जाए, वो समझो कि वो उड़ जाए। जैसे अहिल्या जो है वो पत्थर की थी जिसको मुनि की नारी होकर के उड़ गई, कहीं मेरी या न्याय हरे चरणा की धूली से कहीं मुनि की नारी उड़ जाएगी तो रास्ता तो बंद हो जाएगा, मेरी रोजी चली जाएगी। तो आपको पार जाना हो तो आपका चरण धुआ लो और मैं पार आपको ले जाऊंगा, नहीं तो ये बात है कि लक्ष्मण मुझको तीर से भी मार डाले तो चाहे मार डालो किंतु मैं पार करने का नहीं। भगवान हमसे समझ गए कि ये आपने समझो प्रेम भाव से मेरा चरण धोना चाहता है। बोला कठुआ ले आओ, कठुआ ले आया। अल्लाह के भगवान के चरण को धोने लगा। भगवान सोचने लगे कि जल्दी धो ले तो ठीक है, घर से कोई बुलाओ ना जा दस जी का। बोले अभी जल्दी करो। बोले महाराज जल्दी का काम नहीं है, आस्ते आस्ते धो, आपकी चाह तो धुआओ नहीं मत धुआ, समझा। जरा भी रज रज जावे तो यह नौका टूट जाएगी, मेरा आप बढ़े रहेंगे, पार कुण करेगा। तो भगवान हंसते रहे और भगवान के चरणों को अच्छी तरह से धोकर के और समझो कि अपना सबका उद्धार कर। पग पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितृपार करी प्रभु ही पुनि मुदित गए उले पार दिया। भगवान के चरणों को धोखे के चरणामृत लिया और फिर उस चरणामृत को अपने कुटुंब वालों को चरणामृत दे उनका भी उद्धार कर दिया और बचे हुआ जो जल है उसका तर्पण करके पितरों का भी उद्धार कर दिया, उनको भी संसार सागर से पार कर दिया। फिर राम लक्ष्मण सीता को भी नौका पर चढ़ाकर उनको भी गंगा के पार कर दिया, सबको पार कर दिया। भगवान के चरणों के प्रताप से, पाद से उनके प्रताप से। और किस प्रकार से पाद सेवन करना चाहिए? उदाहरण के लिए जैसे लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा करती है श्री विष्णु भगवान की, और जैसे सीता जी भगवान श्री राम के चरणों की सेवा करती है, इस प्रकार से भगवान के चरणों की सेवा से उद्धार हो जाता है। और जैसे भरजी महाराज भगवान की चरण पादुका को मस्तक धारण करके नंदीग्राम में रखकर उनकी पूजा करता है, इस तरह से भगवान की चरण पादुका की सेवा से जब उद्धार हो जाता है तो चरणों की सेवा से उद्धार है। इसमें तो फिर करना ही क्या है, भगवान के चरणों के प्रताप से थी कितनों का उद्धार हो गया। और ये भी बताया कि सेवक सेव्य भाव बिनो भवन तरही उरेगार,
सेवक सेव्य भाव बिनो भवन तरही उरेगार,
भजिए राम पद पंकज ऐसे सिद्धांत विचार
सिया।
स्वामी सेवक के भाव के बिना मनुष्य का उद्धार होना संभव नहीं है, ऐसा विचार करके, ऐसा सिद्धांत विचार करके भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। तो भगवान के चरणों की सेवा से ही उद्धार हो जाता है। हनुमान जी भी भगवान के चरणों के माई अपने रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। तो चरणों की सेवा जो है उसके साथ में दास भाव का संबंध है, इसलिए हनुमान जी का दास भाव था और चरणों में रहते थे। और ये भी मैंने जो बतलाया तो दास भाव के अंतर्गत चरणों की सेवा बतलाई, तो केवल चरण सेवा से वह सो मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान की पूजा से, केवल पूजा से थी। भगवान गीता में कहते हैं कि पतरंग पुष्पंग फलंग तोयंग यो में भक्त्या पर्यच्छति तदंग भक्तु प्रीत मस्नामी प्रियतात्मने। पत्र पुष्प फल जल जो कोई मेरा प्यारा प्रेमी प्रेम से देता है, उस प्यारे प्रेमी का दिया हुआ मैं सो खाता हूं। तो केवल मात्र भगवान की पूजा से ही सो कल्याण हो जाता है। तुलसीकृत रामायण में भी बताया तो अनन्य जान की असी मति न टरे हनुमन मैं सेवक सतरा तरे रूप राशि भगवन। कहते हैं कि आपने हे हनुमान वे मेरा अनन भक्त है जिनकी मतिमान बुद्धि इस सिद्धांत से कभी डरती नहीं। क्या सिद्धांत? कि चराचर जो है ये भगवान को स्वरूप है और मैं उनका सेवक हूं। तो इसमें स्वामी सेवक भाव आया और समझो कि भगवान के पूजा का भाव आया। और भी गीता कहती है इतने प्रवृत्ति भूतानां ये न सर्व इदं ततम स्वकर्मणात्म भेद्य सिद्धि बिंदती मानव। जिस परमात्मा से यह संसार उत्पन्न हुई है और जो परमात्मा इस संसार में व्यापक है उस परमात्मा को अपने कर्मों के द्वारा पूज करके मनुष्य परम पद को परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें पूज करके समझा अर्चना करके कि और परम सिद्धि की प्राप्ति बतलाई। भगवान सब संसार में व्यापक है, व्यापक भगवान की पूजा बतलाई। और वो पूजा पतंग पुष्प फलंग तो आपने समझो कि भगवान के बिगड़े की पूजा बतलाई। तो भगवान की बिगड़े की पूजा से भी उद्धार हो जाता है, व्यापक भगवान की पूजा से भी उद्धार हो जाता है। वो राजा प्रतु जो है सो पूजा के मां प्रधान थे, भगवान की पूजा के प्रभाव से थी वह उस पद को प्राप्त हो गए। और भी बहुत से भगवान की पूजा कर करके के और परम पद को प्राप्त हो गए। तो केवल अर्चन भक्ति से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसमें विधि वाक्य गीता रामायण आदि का भी वचन है, शास्त्र का वचन है और उदाहरण वाक्य भी है। ऐसे ही बंधन से भी भगवान को केवल नमस्कार करने से भी उद्धार हो जावे। समझो कि गीता में बताया कि अर्जुन कहते हैं प्रभु आपको बाहर से भीतर से नीचे ऊपर चारों तरफ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब ओर से मैं आपको नमस्कार करता हूं। और केवल मात्र नमस्कार करने से ही कल्याण हो जावे इसके लिए शास्त्र भी प्रमाण है। अनुस्मृति के वहां लिखा है कि एको की कृष्ण से कृत्य प्रणाम हो दसवा समेधेन अवृतेन तुल्य दसवा समेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भावाय। इसका ये भाव है कि भगवान श्री कृष्ण जी को एक बार जो नमस्कार किया जाता है उसके दस वर्ष में यज्ञ के समान उसका महात्म है। और दस वर्ष में के समान इतना ही उससे और विशेषता है, दस अश्वमेध यज्ञ करने वाला तो समझो कि स्वर्ग में जाकर उसके फल को भोकर फिर वापिस लौट करके आता है। और भगवान कहते हैं कि जो मेरे को नमस्कार करता हुआ जाता है वो लौट करके वापिस नहीं आता, क्योंकि भगवान को जो नमस्कार करता है तो उसके साथ में भगवान की स्मृति हो जाती है और स्मृति से उसका कल्याण हो जाता है। अंतकाल मामेव समण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति से मदभावंग याति ना सत्संग। अंत समय के बीच के मां मेरा श्रवण करता हुआ जो देह को त्याग जाता है मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो इसलिए केवल मात्र समझो कि आपने भगवान की पूजा से भी मुक्ति हो जाती है और आपने नमस्कार करने से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल नमस्कार से थी करूर जी जो है वे भगवान को नमस्कार ही करते रहते थे। भगवान के जहाँ चरण मिले वहाँ चरणों के वहाँ नमस्कार करते ही अपने मुग्ध हो रहे हैं। इस प्रकार से थी समझो कि केवल नमस्कार से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही दास भाव से, दास भाव की बात पहले तो आपको मैंने बताई कि समझो कि सेवक सेव भाव बिनु भवन त्रय उर्गार भजिए राम पद पंकज ऐसे सिद्धांत विचार। तो पाद सेवन के मां यही आपने दो आपको बताया गया था। और समझो कि गीता के मां भी भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञ न चाप्य न यजन तो माम उपासते एकत्व ने हर पृथक तो इन्हें बहुधा विश्व तो मुखम बहुत से पृथक रूप से थी भी अपने दास भाव से भी मेरी उपासना करके और संसार से तर जाते हैं। और एकत्व माने ज्ञान यज्ञ से भी ऐसे उतर जाते हैं एक ही भाव से भी और भेद भाव से भी। तो समझो कि भगवान की भक्ति से भेद भाव से उतर जाते हैं, ये सभी शास्त्र कहते हैं। भगवान तो कहते हैं कि ये तामांग प्रपद्यं ते तां सदैव भजामि हम, जो जिस प्रकार से उसको भजते हैं उनको उसी प्रकार से भजता हूँ, जिस भाव से भजते उसी भाव से भजता हूँ। तो स्वामी सेवक भाव से भी मनुष्य तर जाता है और शक्य भाव से तर जाता है। इसमें करना है क्या है, जैसे अर्जुन शक्य भाव से परम पद को प्राप्त हो गए और समझो कि बड़े बड़े पापी जैसे सुग्रीव जैसे पापी भी भगवान के साथ में शक्य भाव से पद्म माने परम पद को प्राप्त हो गए। भगवान ने खुद कह दिया सखा सोच त्यागो बल मोरे और सब विधि कर्म काज में तोरी, हे सखा मेरे बल के भरोसे तुम एक प्रकार से थी शोक को त्याग कर दो, मैं सब प्रकार से थी तुम्हारा हित करूंगा कल्याण करूंगा। तो इस लोक में तो समझो बाली को मार करके उसका राज दिला दिया और परलोक के बीच के मैं उसका उद्धार कर दिया। ऐसे ही आपने समझो कि द्वापर युग के बीच के मां बहुत सी जो सखियां हैं आपने उनके साथ में भगवान का शक्य भाव था इसलिए उनका उद्धार कर दिया। भगवान तो उनके सखे थे और भगवान की वह सखियां थी एक प्रकार से, और बहुत से सखों का भी माने जो ग्वाल बाल थे उनका भी उद्धार कर दिया। तो भगवान के साथ में जो सखापण का जो भाव है उसका उद्धार हो जाता है। उसमें क्या करें फिर किसका उद्धार होता है, अर्जुन के लिए स्वयं भगवान ने कहा भक्तों से भी सखा चेती तू मेरा भक्त भी और सखा भी है। और भगवान कहते हैं कि भी जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वो मेरा प्रेमी है सखा है। तो भगवान जिसको अपना सखा बना लिया उसके उद्धार में फिर शंका ये सो क्या है। तो शक्य भाव है माने प्रेम भाव जिसको कहते हैं मित्र भाव, तो मित्र के साथ के बीच में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भी भगवान ने बताया कि जे न मित्र दुख हो ये दुखारी तिन ही विलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख को देख के दुखी नहीं होता है उस पुरुष का कोई दूसरा दर्शन करे तो वही पाप का भागी हो जाता है। और कहा है कि आपने मित्र का जो दुख उसको अपना ही दुख समझना चाहिए और आपत्ति काल पड़े तो मित्र से सौगुणा प्रेम करना चाहिए। आपत्ति काल करे सदगुण नेहा श्रुति कहे संत मित्र गुण एहा, आपत्ति पड़ने पर समझो कि मित्र से सौगुणा अधिक प्रेम करना चाहिए ये श्रुति कहती है। संत मित्रों के ऐसे ही लक्षण होते हैं। निज दुख गिरी समय रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समान, पहाड़ के समान भी दुख हो रहा है तो उसको एक रज के समान एक समझो कि बालू के किनके के समान समझना चाहिए। और अपने मित्र का एक बालू के किनके के समान भी समझो दुख हो तो उसको मेरु पहाड़ के समान समझना चाहिए। जैसे भगवान रामचंद्र जी ने अपने दुख को भुला करके सुग्रीव के दुख को अधिक आदर दिया। सीता का कितना भारी एक शोक था उसको तो भुला दिया और सुग्रीव के वहां एक मामूली बात थी एक प्रकार से थी भगवान के लिए। तो भगवान ने पहला उनका काम किया अपने काम ऐसे बाद में किया। इसी प्रकार से थी हम लोगों को विचार करना चाहिए कि अपने मित्र में जो दुख आ पड़े तो उसकी खबर पहला लेनी चाहिए। तो इसके लिए समझो कि उदाहरण वाक्य भी है और शास्त्र के वाक्य भी ऐसे मिलते हैं। इसी प्रकार से आत्मनिवेदन के बीच के मां भी यही बात है। केवल आत्मनिवेदन से भी अपने कल्याण हो जाता है। भगवान के सर्वस्व समर्पण कर देने से फिर पर भगवान की प्राप्ति हो जावे, इसमें कहना ही क्या है। जैसे राजा बलि ने सर्वस्व अर्पण कर दिया, अपने आप को अर्पण कर दिया, और गोपियों ने भी अपना तन मन धन सब भगवान के समर्पण कर दिया। उनमें भगवान के समर्पण करने वाली जो गोपियां हैं वो आत्म समर्पण करने वाली थी, और उनका सख्य भाव भी था, आत्मनिवेदन भाव भी था। तो इसी प्रकार से समझो कि भाव हुए तो तुरंत उसका कल्याण हो सकता है। और आपने शास्त्रों में भी कहा है, शास्त्रों के बीच के वहां जो है ईश्वर परिधान अथवा महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर परिधान से भी चित्त की वृत्तियां को निरोध होकर के और उसकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। समाधि सिद्धि ईश्वर परिधानात्, ईश्वर परिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है, और भगवान की शरण होने से थी कल्याण। पापी से पापी का ऐसा हो जाता है, कैसा भी पापी हो भगवान कहते हैं कि एक बार ये कह दे कि मैं तुम्हारा हूँ, या एक प्रकार से मैं तुम्हारी शरण आया हूँ, तो मैं कैसा भी पापी क्यों नहीं हो, भगवान कहते हैं मेरे नियम है, व्रत है कि उसका मैं अवैध दान दे देता हूँ, उसका उद्धार कर देता हूँ। और गीता तो कहती है कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्सि शाश्वतम्। उस परमात्मा की तू शरण जा, उसकी कृपा से शाश्वत पद को, शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाएगा, परम शांति को, शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाएगा भगवान की शरण से। और समझो कि महाभारत में भी आता है कि भगवान की शरण से सब पापों का नाश होकर उसका सब उद्धार हो जाता है। इसी प्रकार से शास्त्रों के बीच के मां जो है सो जगह जगह ये बात आती है। तो माने भगवान की शरण होने से उद्धार हो जाए, उसमें तो बात ही क्या है। ये नौदा भक्ति बतलाई, नौ प्रकार बतलाई, इसमें एक प्रकार कोई भी धारण करने से उसका कल्याण हो जाता है। इसके लिए आपको उदाहरण भी दिए गए और आपको विधि वाक्य भी बतलाई, शास्त्र की आपने कानून भी आपको बतलाई। तो एक भी अंग को धारण करने से, एक प्रकार की भक्ति करने से भी उसको निश्चय कल्याण हो जाता है। इसलिए हम लोगों को सब प्रकार से भगवान की शरण होना चाहिए और सब प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जो नवदा भक्ति है, प्रेम से करनी चाहिए, विश्वास से करनी चाहिए, श्रद्धा प्रेम पूर्वक, और भगवान की ऐसी भक्ति निष्काम भाव से की जाए तो सर्वोत्तम समझी जाती है। ये नवदा भक्ति आपको संक्षेप से कही। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।
यह नवदा भक्ति के विषय का व्याख्यान पूज्य श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी तदनुसार तारीख 9 दिसंबर 1956 को रात्रि में 8 बजे से मान्य श्री घनश्याम दास जी जालान के घर पर साहेबगंज गोरखपुर में दिया गया।